हमसे किस बात को लेकर युद्ध करना चाहते हो? आप लोग यदि पाप के अंदर हो तो अब आप हमारे सामने आओ, हम तुम्हें निष्पाप कर देंगे, अर्थात तुमको मार करके तुमको सदगति प्रदान कर देंगे। हम ऋषियों के आये ऋषियों के आदेश से धनुष बाण धारण करते हैं। यदि आप में ज्यादा ताकत हो तो हमारे सामने हो, हमारे सामने आकर तुम युद्ध करो, और यदि अभी आपको प्राणों से मोह है तो आप यहाँ से भग जाओ और अपने वापस जहाँ से आए हो वहीं पर जाकर के छिप करके बैठ जाओ। वो 14 राक्षस थे, बड़े भयंकर राक्षस, अपने हाथ में त्रिशूल वगैरह लिए हुए, बड़े कठोर बोलने लगे, ओ राम, पहले तो आपने क्रोध को पैदा किया हमारे महाराज खर के मन में क्रोध पैदा किया, और अब आपको प्राण प्रिय लगने लगे हैं। अब देखो हमारे प्राण नहीं जाएंगे, प्राण तुम्हारे निकलेंगे, थोड़ी देर के तुम मेहमान हो, तुम्हारे पास में ऐसी क्या शक्ति है? हम 14 राक्षस आए हैं, तुम 2 राजकुमार हो, तुम हमारे से कितनी देर युद्ध कर सकते हो? तुम्हारे पास में क्या शक्ति है? अस्माकम अग्रतः स्थातुम किम पुनर्योद्धुम आहव, तुम हमारे सामने नहीं ठहर सकते, युद्ध में ठहरने का प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत सी उल्टी पुल्टी बातें की और कहा, ये देखो हमारे पास परिग है, ये हमारे पास शूल है, ये हमारे पास पट्टिश है, हम इनके द्वारा आपके प्राणों को ले लेंगे, तुम्हारे पास तो एक धनुष के अलावा और क्या है? धनुष तो हमारे पास भी कौन से कम है। इतना कह करके एक साथ ये 14 के 14 राम जी के ऊपर टूट पड़े। में अपना बाण लिया और जितने शूल थे उन शूल के ऊपर बाण की वर्षा की, तो वो शूल उस समय में टूट गए। परिग थे, उन परिगों को तोड़ दिया, जितने जितने उनके पास शस्त्र थे सारे शस्त्रों को राम जी महाराज ने तोड़ दिया। नाराज थे, नाराजों को तोड़ दिया राम जी महाराज ने, जितने उनके पास में लड़ाई के साधन थे सब तोड़ करके अपनी तरफ से बड़े वेग से उन्होंने एक बाण पर एक बाण इस प्रकार से चलाया। वे बाण उनके छाती में जा लगे और जगह जगह उन जो है छाती में लग जाने से अब उनके इधर उधर दौड़ने की आने जाने की शक्ति कम हो गई और थोड़ी देर में वे तड़पते हुए सब के सब वहां पर मर गए। 14 राक्षस के मर जाने के बाद वो राक्षसी वहां से जो है क्रोध से मूर्छित हुई, रवाना हुई, और रवाना होकर के और जो है वो खर के पास में आई। खर के पास में आकर सस्वरम मुमुचे वाष्पम, वहाँ पर बहुत जोर जोर से वो रोने लगी, उसका मुंह लटक गया, और उन सबको देख करके खर ने आगे उनसे पूछा कि क्या बात हुई, तुम किस प्रकार से ऐसी बात कर रहे हो कि तुम रो रहे हो? अब तो तुमको रोने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। पूछा, हे शूर्पणख, मयात्मिदानीम सूरास्ते, क्या बात है, तुमको खून नहीं मिला सीता का, तुमको राम का खून नहीं मिला, क्या तुमको लक्ष्मण का खून मिला नहीं? अरे वो कैसे हैं राक्षस, कहाँ गए वो, उन्होंने मार करके यूं ही फेंक दिया राम को लक्ष्मण को सीता को मार के यूं ही फेंक दिया, क्या उसका खून नहीं मिला होगा तभी तुम रो रही हो? क्या बात है, जब वो मारी दिए गए हैं तो फिर तुम क्यों रोती हो? अब उसको खर को तो यही विश्वास था कि मार दिया, अरे वो तो मेरे परम भक्त हैं, मेरे आदेश के ऊपर अनुरक्त रहने वाले हैं, परम हितेशी हैं, हन्य माना न हन्यन्ते न च कुर्युर वचो मम, वे तो भाई मारते हैं मरते नहीं हैं, वे मेरे वचनों को इधर उधर कर नहीं सकते हैं, तो हे नाथ हो नाथ बचाओ ऐसा क्यों बोलती हो, क्यों जमीन के ऊपर सर्प के समान तुम लटपट कर रही हो, अनाथ के समान क्यों तुम रो रही हो, मेरे रहते हुए तुम इस प्रकार से अनाथों के समान रोते हो, उठो उठो और अपनी अपनी विकलता को तुम छोड़ो। खर ने जब इस प्रकार से कहा तो उसकी बहन शूर्पणखा ने वापस उनको जवाब दिया, आसीद अस्मिदानी महम प्राप्ता, आपको पता है कि नहीं कि मेरे नाक की पीड़ा कम नहीं हुई है, मेरे कान की पीड़ा कम नहीं हुई है, मेरी ये पीड़ा तो और ज्यादा बढ़ गई, और जो 14 आपने राक्षस भेजे थे मारने के लिए, वे सारे के सारे राक्षस राम के द्वारा मारे गए हैं। राम ने अपने धनुष के द्वारा उनके त्रिशूल को काट दिया, राम जी ने अपने धनुष के द्वारा उनके परिघों को समाप्त कर दिया और उनके मर्म स्थल में वो बाण लगाए, वो वहीं पर गिर गए और नष्ट हो गए। ऐसी तो आपकी सेना है जिसमें आप इतनी बड़ाई करते हो। और फिर मैं तो डर करके वापस यहाँ आ गई। अब मैं आपके पास आकर फिर सोचती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। विषाद अनुक्राद्युषिते परित्रासोर्मि मालिनी किम्माम नत्रायसे मग्नाम विपुले शोक सागरे। देखो मैं विषाद रूपी मगरमच्छ के द्वारा पकड़ी गई हूँ, शोक के सागर में विषाद रूपी मगरमच्छ के द्वारा पकड़ी गई हूँ और डर रूपी लहरों के अंदर दौड़ रही हूँ। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, खर मेरी रक्षा करो। राम के तीखे बाण है, मैंने देखा है ऐसे प्रबल राक्षस उनको बहुत फुर्ती से मारा है। यदि आप मेरे पर कृपा करते हो, राक्षसों के ऊपर कोई कृपा करनी हो तो आपको राम के ऊपर जल्दी से जल्दी चढ़ाई कर देनी चाहिए। दंडकारण्य को ये लोग राक्षसों से रहित करना चाहते हैं, ये मेरे मन में विश्वास हो गया। ये राम है, ये यदि रामम अमित्रघ्नम न त्वम अद्य वदिष्यति, यदि आज इस राम को तुमने नहीं मारा तो देखो खर मैं आज तुम्हारे सामने बिना किसी लज्जा और संकोच के अपने प्राणों को त्याग दूंगी, चाहे जहर खा करके मरूं चाहे आग लगा के मरूं, तुम्हारे सामने आज मर जाऊंगी। बुद्धिया अहम अनुपश्यामी, मैं तो ये अपने अकल से सोचती हूँ, ज्यादा तो मेरे में अकल है नहीं, मैं अकल से सोचती हूँ कि तुम लोग राम के सामने ठहर नहीं सकोगे। सूरमानी न सूरस्तम, तो बातें तो तुम बड़े बड़े सूरवीरों की करते हो पर तुम्हारे अंदर सूरवीरता नहीं है। मिथ्या रूपित विक्रम है, आप अपने को मिथ्या ही पराक्रम वाला मानते हो, इसलिए या तो आप अपने भाई बंधुओं सहित स्वयं ही दंडकारिणी को छोड़कर और जगह जाकर रहो और या फिर राम के सामने अधीन होकर के तुम रह जाओ, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय मुझे दिखता नहीं है। मानसौ तौ न शक्नोसी हंतुम वही राम लक्ष्मणौ, ये राम और लक्ष्मण दिखने में तो मनुष्य जैसे दिखते हैं पर वास्तव में ये मनुष्य नहीं, मनुष्यों में बड़े विलक्षण हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य है कि आपकी इतनी कम शक्ति है, आप यहाँ पर बैठे क्यों हैं? राम का तेज बड़ा विलक्षण है। त्वम क्षिप्रम विनशिष्यति, तुम बहुत जल्दी विनाश को प्राप्त हो जाओगे। राम बड़ा तेज वाला है और तुम लोगों के पास न वाणी में तेज, न व्यवहार में तेज और न तुम्हारे कार्यों में कोई तेज है। इस प्रकार से शूर्पणखा बहुत नाराज हुई और नाराज होने के बाद में वो वहां पर जोर जोर से रोने लगी। तब फिर खर ने कहा कि ठीक है, तेरा जो अपमान होता है वो मेरा ही अपमान है और मेरा क्रोध बढ़ चुका है, अब मैं किसी प्रकार से तुम्हारे अपमान को सह नहीं सकता हूँ। जैसे कोई जले कटे के ऊपर नमक छिड़क दे, इसी प्रकार से 14 राक्षसों को मारने का अर्थ क्या है कि मेरे कटे हुए ऊपर नमक छिड़कने की बात हुई है, मैं अब इस अपमान को नहीं सह सकता हूँ। ये राम अपने दुष्चरित्रों के द्वारा आज मेरे हाथों से मारा जाएगा, इसके प्राण छीन लिए जाएंगे। रो मत, रोने के दिन तो अब राम के आ रहे हैं, अब ये तुम्हारे रोने के दिन नहीं है। मैं आज स्वयं जाओ करके राम को, लक्ष्मण को और सीता को मार दूंगा। मेरे पास ये ऐसा परशु है कि ये इस परशु राम को जीने नहीं देगा। पास में राम होगा तो परशु से काट दूंगा और यदि राम दूर होगा तो परसे से फेंक करके उसका मैं सिर काट दूंगा। आज राम मरना मरा हुआ ही ऐसा मानो, प्रसन्न हो जाओ। खर ने इस प्रकार से उसको सांत्वना दी और उसके बाद खर और दूषण को खर ने बुलाया और बुला करके दूषण को कहा कि देखो दूषण, 14,000 मेरे सैनिक हैं, यही मेरी यहाँ सबसे बड़ी संपत्ति है, इस संपत्ति को लेकर के जाओ और ये जब सेना जाएगी उसके बाद में तो फिर राम क्या करेगा। एक राम तो एक ही है ना, अकेला राम कितना काम करेगा। ये सेना क्या है, ये सेना एक नील वन के समान है, बड़े भारी कोई नील वन है, ऐसा सा ये सेना है और इसमें तलवारें वगैरह चमकती जंगल के अंदर, तलवारें वगैरह चमक रही जंगल के अंदर नदियों के समान है। इसलिए जो है तुम इस सेना को लेकर के जाओ। ये बात सुनकर के दूषण ने अच्छे अच्छे घोड़ों को तैयार किया और जो है बलवान हाथियों को तैयार किया और हेम चक्रम असंबाधम उस समय में वे वहां से रवाना हुए। उनके रथों के अंदर कहीं मत्स्य का चिन्ह है तो कभी पुष्प का चिन्ह है तो कहीं सूर्य का चिन्ह है, कहीं चंद्रमा का चिन्ह है, कहीं पक्षियों का चिन्ह है, कहीं ताराओं का चिन्ह है, कहीं पताकाएं बिल्कुल बहुत ऊंची ऊंची लगी हुई है। इस प्रकार से अनेक अच्छे अच्छे घोड़ों से युक्त जो रथ है वो रथ भी रवाना हो रहे हैं। इस प्रकार से वे लोग रथों में बैठ करके चलने लगे तो खर भी साथ में चलने लगे हो तो खर भी उनके साथ चलने लगे। तो तस्मा ततस्तद राक्षसम सैन्यम घोर चर्मायुधद्वदम निर्जगाम जनस्थानात महानादम महावनम। बहुत बड़ा नाद करते हुए आवाज करते हुए वे लोग जंगल के अंदर घुस गए और वे 14,000 जब अंदर घुस गए तो अपनी शक्तियां प्रकट की और शक्तियां प्रकट करके और वो जो है राम जी के साथ में युद्ध करने की पूरी ठान ली है। खरस्याद अर्थ है किंचित, इतना वेग से ये 14,000 सैनिकों का वेग आ रहा था, खर ने अपनी जगह से हटकर के इनको जगह दी। अच्छा बाबा पहले तुम जाओ। इस प्रकार से खर भी कांपने लग गया था अपने सैनिकों से कि देखो कितने वीर सैनिक हैं ये, ऐसा वो मन में बड़ा विश्वास किए हुए था। इधर जो है सब लोग वहां पर पहुंचने लगे तो खर ने भी अपने रथ को जो है संचालित किया और बड़ा भारी नाद करके अपने घोड़ों को इशारा करके राम जी के आश्रम की ओर भेजा। अब वहां तरह तरह का अमंगल होने लगा। जब ये खर रवाना हुआ तो बहुत अमंगल हुआ। सबसे पहले तो ये बात थी कि उसके जो घोड़े थे वो बिना किसी कारण के ही चलते 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 ही बैठ गए, फिसल करके पड़ गए, बैठ गए और वो जो रथ था वो रथ डगमगा गया। फिर वे आगे चले तो आगे उनको देखा तो भाई उन्होंने सूर्य को देखा। सूर्य के ऊपर जो ये काला काला वृत्ताकार चिन्ह है वो दिखाई दिया। वो क्या पहले तो काला है आगे जाकर पीला है तो देखा कि ये भी मृत्यु का द्योतक है। और फिर जो है गीत को देखा, गीत था वो बहुत ऊपर ही ऊपर उसके ऊपर ही ऊपर घूमता है खर के झंडे के ऊपर ऊपर ही। ततो ध्वजम उपागम्य उसकी ध्वजा के चारों तरफ वो गीत है वो घूम रहा है और विविध प्रकार का नाद करने वाले आवाज करने वाले पशु पक्षी इधर से जाते हैं उधर से आते हैं। बहुत जो है उनके आवाज से रावण जो है वो बड़ा परेशान हो गया, नहीं खर है वो बड़ा परेशान हो गया। अब वो खर भी दौड़े आए वो भी आए वो सब अपशकुनों में लगे हुए हैं। अब जो आकाश है आकाश के अंदर बड़ी गर्जना होने लगी और आकाश में जो बदल है उन बदलों से खून की वर्षा होने लगी और आकाश बिना किसी कारण के ही बिना वायु के चलते ही आकाश एकदम काला काला हो गया। वायु चले और मिट्टी उड़े तब तो कुछ पता भी चले और बदल भी हो तब भी कुछ पता चले, बिना बदल के और बिना मिट्टी के उड़े ही आकाश काला काला दिखने लग गया। संध्या का समय है वो संध्या का समय में एकदम जो है वो जो है लाल लाल हो गया, खून के समान संध्या प्रतीत होने लगी। ये सब खर के लिए बड़ा अपशकुन था। गीदड़ी थे ये गीदड़ी ये बहुत अपशकुन में घोर शब्दों से बोलने लगे और उनके रथ के ऊपर एक गीद आया। गीद आकर के और उस रथ के ऊपर बैठ गया, बहुत बड़ा शरीर वाला और उसकी पताका थी वो नीचे गिर गई। उत्पेतुश्च बिना रात्रि के ही आकाश में तारे दिखने लगे और वो तारा आकर के नीचे गिरने लगे। इस प्रकार से ये अपशकुन होते जा रहे हैं और वे लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस समय पृथ्वी के अंदर भूकंप सा होने लगा। खर इन बातों को मानता नहीं था, अतएव खर ने अपने सैनिकों से कहा कि देखो अपने इन अपशकुनों को देख करके घबराओ मत, ये उत्पात हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। इन उत्पातों को देख करके आप निडर रहो। बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो इन उत्पातों से नहीं डरते हैं। महोत्पातान इमान सर्वान उत्थितान घोर दर्शनान न चिंतयाम मेहम वीरियात बलवान दुर्बला निव। देखो मुझे कोई डर नहीं है सैनिकों। बड़े बड़े अपशकुन हुए हैं। ये अपशकुन तो कायरों के लिए होते हैं जो अपना मनोबल गिरने नहीं देते। उनके लिए कोई अपशकुन नहीं है। तारा है, इन ताराओं को तो हम यूं ही ला करके भी गिरा सकते हैं। मौत की हम मौत कर सकते हैं। हम राम के बिना और भरत के बिना जो है आप लोगों को देखना चाहते हैं। आज राम का और भरत का जीवन का अंतिम दिन मानना चाहिए। हम भरत नहीं लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण इन दोनों का खून पी लेंगे। सकामा भगनी मेस्तु, मेरी बहन की जो इच्छा है कि राम की और लक्ष्मण के खून पीने की और सीता के खून पीने की, आज इच्छा पूरी होकर के रहेगी। न क्वचित प्राप्त पूर्वों में संयुगेशु पराजय। आज तक कोई मेरे सामने युद्ध के अंदर टिका नहीं है। जो अभी कोई युद्ध में आया मेरे से परास्त हुआ है। देवता लोग भी मेरे से हारे हैं। इस बात को आप लोग जानते हो, इसलिए आपको किसी प्रकार से भय नहीं लाना चाहिए और निर्भय होकर के राम के साथ में जो है युद्ध करना चाहिए। उसकी गर्जना पूर्ण बातें सुनकर के और उनके सैनिकों ने अपना मनोबल नहीं गिरने नहीं दिया और युद्ध के दर्शन की आकांक्षा से वे सब वहां से रवाना हुए। इधर आकाश में देवता गंधर्व सिद्ध चारण ये अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे और ये आपस में कहने लगे कि ब्राह्मणों का हित हो, गवों का हित हो, त्रिलोकी का हित हो और राघव आज युद्ध के अंदर जीत जाए। ऐसा कोई प्रयास हो जाना चाहिए जैसे विष्णु जीतते हैं, ऐसे ही राघव आज जीत जाए। ऐसी सबके मन में इच्छा हो रही है, देवताओं के मन में। और विमानों में बैठे हुए वे इस युद्ध को देखना चाहते हैं। इधर खर के पास में चारों तरफ 12 बड़े बड़े महारथी हैं। ये महारथी खर की रक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार दूषण की भी रक्षा हो रही है। और ये 5,000 ऐसे सैनिक हैं जो इनका फिर मंडल बना के चल रहे हैं, फिर आगे मंडल। इस प्रकार से 14,000 जो ये सैनिक हैं, ये सैनिक अब राम जी के साथ युद्ध करने के लिए राम जी के आश्रम के पास पहुँच चुके हैं। भगवान पंचवटी पर पधार गए हैं। शूर्पणखा का नाक और कान काट दिया गया। नाक कान काटने का एक रहस्य है। संस्कृत में नाक बोलते स्वर्ग को और कान कान को बोलते श्रुति। माने ये श्रुति शास्त्र धर्म शास्त्र इन सब से रहित हो गई और इसको इस लोक में तो कष्ट है, इस स्वर्ग आदि भी ऊंचे लोक भी इसको नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से आचरण करने वाली को राम के अंदर यदि मोहित होती है तो कोई बात नहीं। राम में मोहित हुई तो लक्ष्मण में मोहित हो गई, लक्ष्मण ने कहा तो राम की तरफ चली गई। राम में यदि निष्ठा रहती तो कोई बात नहीं, लक्ष्मण से ही नाक कान कटवाए भगवान ने। अस्तु, तो नाक कान कटने के बाद उसने अपने भाइयों से कहा तो 14 सैनिक आए, वो सैनिक मारे गए। अब खर रवाना हो रहा है 14,000 सैनिकों के साथ। तो रास्ते में कई प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं जिनको देखकर खर डरता नहीं है। आश्रम के पास में वे सब पहुंच गए हैं। राम जी महाराज अपने भाई के साथ हैं। इन उत्पातों को देख करके राम जी महाराज प्रजा का अहित देख करके कि अब यहाँ रहने वाले प्राणियों का हित नहीं है, ऐसा मन में विचार करके लक्ष्मण से कहने लगे, देखो लक्ष्मण ये जहाँ अपशकुन हो रहे हैं इनसे मालूम देता है कि यहाँ के प्राणियों पर एक बड़ा भारी संकट आने वाला है। इन उत्पातों से राक्षसों का संहार होगा, यहाँ खून की धाराएं बहेंगी, यहाँ कर्कश ध्वनि से मरने वालों का चीत्कार सुनाई देगा, आकाश के अंदर मेघों से खून की वर्षा हो रही है, पशुओं की आवाज में भिन्नता आ गई है, मेरे तर्कश में रहने वाले बाण उछल उछल करके युद्ध के लिए उन्मुख हो रहे हैं। जिस प्रकार से ये पशु पक्षी आवाज करते हैं, उनसे ऐसा लगता है कि हमको तो अभयता मिलेगी और प्रतिपक्षी का नाश होगा, बड़ा भारी युद्ध होने वाला है, मेरा दाहिना मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, शत्रु मेरे नजदीक आ गए हैं, लक्ष्मण तुम्हारे चेहरे पर अपार प्रसन्नता है, इसलिए लक्ष्मण तुम युद्ध के लिए उद्यत मालूम देते हो। जिसका युद्ध में उत्साह होता है उसके अंत में विजय होती है। राक्षसों का घोर शब्द सुनाई दे रहा है, इसलिए राक्षस लोगों की विजय का मुझे संदेह है, ये इनके किसी प्रकार से विजय होने वाली नहीं है। तुम एक काम करो, सीता को यहां से ले जाओ और पर्वत की गुफा में ले जाकर इसकी रक्षा में रहो। मैं तुम्हें तुम्हारे मन के प्रतिकूल बात कह रहा हूं, इस बात को लेकर तुम किसी प्रकार मन में संशय मत लाओ। तुम्हें मेरे चरणों की सौगंध है, मेरी बात का किसी प्रकार से खंडन न किया जाए। तुम शूरवीर हो, ये मन में विचार मत करो कि राम को अकेले युद्ध में कैसे मैं रख दूं, मेरे रहते हुए राम कैसे युद्ध करे, इस बात का मन में संशय मत लाओ। आज का युद्ध इसी प्रकार से उचित है, इसलिए तुम यहां से जितना जल्दी हो सके रवाना हो जाओ। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर दुखी मन से रवाना हुए। उन्होंने एक पर्वत कंदरा में ले जाकर उनको रख दिया और इधर राम जी महाराज कवच वगैरह पहन करके, सब शस्त्रों को तैयार करके, अपने अग्नि के समान देदीप्यमान बाणों को देख करके, और एक बाण को उन्होंने अपने धनुष पर चढ़ाकर चारों तरफ दृष्टिपात करके जोर से धनुष की टंकार की। उस टंकार से सब दिशाओं के अंदर ध्वनि हुई, आकाश में देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, ये सब युद्ध के दर्शन की आकांक्षा से इकट्ठे हो गए।